विवाह संस्कार पहले हमने पिछले बार तो हमने शिवरात्रि सेलिब्रेट किया था, उसे पहले शिवरात्रि विवाह संस्कार के ऊपर चर्चा की थी। विवाह संस्कार का क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी सामाजिक महत्व जो सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, उसका कल्चरल सांस्कृतिक महत्व क्या है और उसका जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है धार्मिक महत्व क्या है, नंबर और दूसरी चीज है विवाह के बाद जो गृहस्थ आश्रम होता है जो मैरिड लाइफ वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है इंडिविजुअल के लाइफ में और सोशियली भी कितना इम्पोर्टेंट है, उन सब के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। उसी विवाह संस्कार, क्योंकि विवाह संस्कार हमारे लाइफ में जितने संस्कार है उनमें सबसे बड़ा रोल यही निभाता है, तो इसलिए इनको ठीक से अच्छी तरह हर पहलू को समझने की जरूरत है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे विवाह संस्कार के जो रिचुअल्स होते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट रिचुअल्स है, जो विधि है कर्मकांड, वो कितने इंटरेस्टिंग है और कैसे मैसेज देते हैं, वो अलग बात है कि हिंदुओं में अब समझने समझाने की वो ना एबिलिटी है रहा ना इंटरेस्ट रहा। पुरोहित लोग विवाह कर देते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या मंत्र बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। आज इनकी शादी होती है, इनको भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं, खाना पीना नाचने गाने में ही इंटरेस्ट रहता है, इसलिए ये सब चीजें पीछे चला गया। मैं जानबूझ के ये टॉपिक इसीलिए लिया कर्मकांड से, जब आप समझेंगे कि जब विवाह हो रहा होता है लड़के लड़की का तो उसमें जो विधियां की जाती हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो कितने अच्छे विचारों वाले मंत्र होते हैं और उन विधियों के पीछे क्या सोच है, और जो लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही है अगर उनको कोई ये समझाए, उनको अगर पता चले तो शायद आगे जाकर लाइफ में जो मैरिड लाइफ के वैवाहिक जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। जो प्रॉब्लम इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि शादीशुदा लाइफ में कैसे जीना चाहिए और एक मैरिड लाइफ में क्या करना चाहिए। हर आदमी तो गूगल में सर्च करके ये पढ़ के नहीं शादी करता है कि मुझे शादी के बाद क्या करना है नहीं करना है, उसमें अनपढ़ लोग भी होते हैं, गांव के लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, किनके पास टाइम है नहीं किनके पास टाइम है, हर कोई किताबें खरीद के तो नहीं पढ़ेगा, पत्नी से कैसे बिहेव करे पति से कैसे बिहेव करे किन चीजों का ध्यान रखे, आजकल तो हर चीज की बुक्स और ऑनलाइन मिल जाता है। ये चीजें विवाह के समय जो पुरोहित है उन मंत्रों को वो समझाएं और विधियों को ठीक ठीक समझाएं तो बच्चों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि पति और पत्नी के रिश्ते में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, इसीलिए आज हमने ये टॉपिक चुना। उससे पहले और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विवाह से रिलेटेड और वो है आठ तरह के जो विवाह हमारे शास्त्रकारों ने धर्मशास्त्रकारों ने जो रिकमेंड किया है। रिकमेंड करने का अर्थ नहीं कि उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है कि आठ तरह के शादियों में से कोई एक करो, नहीं। समाज में 5,000 साल पहले 10,000 साल पहले हो या आज हो, जिस तरह के लड़कियों के साथ व्यवहार होता है उन स्त्रियों के परिस्थिति को उनके सिचुएशन को देख करके उनको उनकी खराब से खराब सिचुएशंस को अकोमोडेट करने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने आठ तरह के शादियों को एक्सेप्ट किया है, रिकमेंड किया नहीं एक्सेप्ट किया है, आठ तरह की जो शादियां हैं। तो वो जो आठ तरह के शादियां हैं सोसाइटी में जो महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए या उसका एक अच्छा सल्यूशन निकालने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऋषियों ने ये आठ तरह के विवाहों के बारे में बात की। आज पहले हम उसी से चर्चा करेंगे। मनुस्मृति का मैं कोट कर रहा हूं, पर जरूरी नहीं कि जो कुछ मैं बता रहा हूं वो सब मनुस्मृति में ही है। सभी धर्म शास्त्रों में थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ ये मिलता है। चतुर्णाम अपि वर्णानाम प्रेत्य चैह हिताहितान अष्टौ इमान समासेन स्त्री विवाहान निबोधत ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष प्राजापत्यस्तथा सुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमोधमः। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ये जो विवाह के आठ तरीके हम बता रहे हैं वो स्त्रियों के विवाहों की बात कर रहे हैं, महिलाओं से रिलेटेड विवाहों की बात कर रहे हैं, और ये आठ विवाह किसी भी वर्ण में हो जात में हो वो उनके लिए रिकमेंडेड है। और उनका नाम क्या है? ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, इस तरह के आठ तरह के विवाह रिकमेंड किया गया। वो जो सबसे शुरू के जो ब्राह्म विवाह है ये सबसे बेस्ट और अच्छा विवाह है, सबसे जो वर्स्ट और लोएस्ट कैटेगरी का विवाह है पैशाच है। आप कहेंगे इसमें लोएस्ट की क्या मतलब है, वर्स्ट की क्या मतलब है? अगर वो इतना वर्स्ट है तो उस विवाह को माना क्यों जाता है, उस मैरिज प्रोसीजर को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है? किया जाता है स्त्रियों की प्रॉब्लम को थोड़ा समझने के लिए, उनको रेकमेंड, स्त्रियों की प्रॉब्लम्स को देख करके उनको उनका एक सोशल सॉल्यूशन निकालने के लिए किया जाता है। उनमें सबसे पहले ब्राह्म विवाह की चर्चा करेंगे। आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयं आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः। जब लड़की लड़की और उसके माँ बाप जो ग्रूम है, जो वर है, लड़का है जिसको वो अपने लड़की के लिए वर के रूप में चूज करते हैं, और वो लड़का जो पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, चरित्र से भी अच्छा हो, ऐसे एक चरित्रवान ज्ञानी समझदार लड़के को रेस्पेक्टफुली इनवाइट करके उसके साथ अपनी बेटी के शादी कराना, उसको कहते हैं विदाउट टेकिंग एनीथिंग इन एक्सचेंज, उसके बदले में कुछ किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल या किसी दूसरे तरह का एक्सचेंज नहीं करना, जैसे दहेज वगैरह चलता है वो सब नहीं करना, उसको ब्राह्म धर्म कहा जाता है। सॉरी, ये सबसे बेस्ट और सबसे ऑनरेबल धर्म के रूप में स्मृति शास्त्र एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड कैटेगरी का जो आजकल ये नहीं है पर प्राचीन काल में कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता था, हर जगह नहीं, उसको कहते हैं दैव विवाह। वो एक स्पेशल केस में एक तरह की शादी होती थी। यज्ञे तो वितते सम्यक ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। जो प्राचीन काल में जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जो ऋषि लोग ऋत्विक बन के या यज्ञ के पुरोहित बन के आते थे, कभी कभी उनको अपनी बेटी से ब्याह किया जाता था, उनकी शादी करा दी जाती थी कन्या के साथ, तो या कभी कभी वो जो ऋषि है वो डिमांड करते थे कि मुझे इससे शादी करनी है, तो उनकी शादी करा दी जाती थी, तो उसको दैव विवाह कहा जाता था। तो ये एक स्पेसिफिक परिस्थिति में ऐसी शादियां होती थी, उसको भी एक्सेप्ट किया गया। तीसरी शादी होती है आर्ष विवाह। एकम गो मिथुनम द्वेवा बरादादाय धर्मत कन्या प्रदानम विधिवत आर्षु धर्म सउच्यते। जिस विवाह में बच्चे लड़की के माँ बाप लड़के से कुछ ना कुछ दहेज के रूप में लेते हैं, ध्यान रखिए, महिला के माँ बाप पुरुष से दहेज के रूप में लेते हैं और वो दहेज की क्वांटिटी लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड। और वो क्या था, एक जोड़े गाय या दो जोड़े गाय, बेसिकली इसी को लेकर के जब लड़के से लड़कियों की शादी, अपनी लड़की की शादी की जाती थी तो उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। चलते चलते मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आजकल जो भारत में दहेज की एक भयानक बीमारी चल रही है, लड़की वाले कंगाल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लाइफ बेकार हो जाता है लड़की के माँ बापों की दहेज देने के लिए। और दहेज किसको दिया जाता है, पुरुष को दिया जाता है, पुरुष के माँ बाप को दिया जाता है। मजेदार बात है, किसी भी शास्त्र में पुरुष या पुरुष के घर वालों को दहेज देने का ना कोई डायरेक्ट ना कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस भी नहीं है, रिकमेंडेशन तो छोड़िए। हाँ, अगर कोई दहेज लेने देने की बात कहीं भी है वो लड़की वालों को लेने की है। मतलब पुरुष हमेशा से स्त्री के घर वालों को या स्त्री को दहेज देता रहता था, पर पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी जब बनी तो हमने फिर खुद लेना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो जिस विवाह में दहेज स्त्री के घर वाले लेते थे या स्त्री लेती थी उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। ये तीसरा विवाह है। चौथा तरह के विवाह था प्राजापत्य विवाह, सहोभव चरताम धर्म मितिवाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः। प्राजापत्य विवाह उसको कहते हैं जहां पुरुष और स्त्री, मतलब लड़का और लड़की दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहती थी और लड़की के घरवाले जब विवाह कराते थे इस प्रॉमिस के साथ, ये कंडीशन लगा के शादी कराते थे कि मेरी बेटी के शादी के बाद कुछ भी तुम्हारे लाइफ में होगा उसमें मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का बराबर का अधिकार होगा, वो प्रॉपर्टी हो, ड्यूटीज हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो या सुख भोगना हो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुख भोगना हो, इन सब में पुरुष और स्त्री का, मतलब लड़की के माँ बाप ये कंडीशन लगाते थे मेरी बेटी के समान अधिकार होगा। इस कंडीशन के साथ लड़की को जो ब्याहते थे उसको प्राजापत्य विवाह कहा जाता है। जो आजकल की मॉडर्न एज में पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जिस तरह की शादी को अप्रिशिएट करते हैं वो यही प्राजापत्य विवाह है, जहां लड़का और लड़की को शादी के बाद बराबर का हक मिले, इक्वल राइट्स मिले। इसी इक्वल राइट के बेस पर जो हस्बैंड एंड वाइफ बनने की जो शादी विवाह संस्कार है उसी को प्राजापत्य संस्कार कहा जाता है। तो ये चार विवाह सबसे अच्छे विवाह माने जाते हैं क्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजिकली। उसके बाद धीरे धीरे कमजोर विवाह आते जाएंगे, थोड़े थोड़े खराब खराब विवाह आते जाएंगे। क्यों ये है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आसुर विवाह, ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्त्वा कन्या यही चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वच्छंद्यात् आसुरो धर्म उच्यते। अपने आर्ष विवाह में जाना कि लड़की के माँ बाप, कन्या के माँ बाप एक जोड़ा या दो जोड़े गाय के बदले गाय लेते थे दहेज के रूप में शादी में, उसी को कहा जाता था आर्ष विवाह। आसुर विवाह में जहां लड़की के घर वाले उसके रिलेटिव्स कन्या की शादी के लिए लड़के से यथाशक्ति जितना लड़का या लड़के के घर वाले मतलब जो ग्रूम है, वर और उसके घर वाले जितना सामर्थ्य उनको धन दे सकते हैं उतना धन लेने के बाद ही कन्या की विवाह करते थे उसके साथ। इसी को कहते हैं आसुर विवाह। ये एक तरह का आजकल के जो मॉडर्न एज में जो दहेज के साथ शादी होती है, आज का दहेज उल्टा है। वर वाले वधु से कन्या से डिमांड करते हैं, उस समय जैसे मैंने आपको बताया वर वालों का डिमांड का कोई अधिकार नहीं था, कन्या वाले डिमांड करके वर से दहेज लेते थे और शादी कराते थे। ये एक तरह का लोअर लेवल की शादी मानी जाती है। इसका नंबर पांचवा है। छठे नंबर की जो शादी है गांधर्व विवाह। इच्छया अन्योन्य संयोग कन्या याश्च वरस्य च गांधर्वस्तु विज्ञेयो मैथुन्य काम संभव। गांधर्व विवाह जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है और भारत में जो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा पॉपुलर था, पर आज बीच में काफी ज्यादा गांधर्व विवाह को खराब नजर से देखा गया। आजकल जैसे जैसे सोसाइटी थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है तो गांधर्व विवाह पॉपुलर होता है। तो गांधर्व विवाह क्या है, जो आजकल सबसे पॉपुलर विवाह है वो क्या है? वर और वधु लड़का और लड़की अपनी इच्छा से एक दूसरे को पसंद करके या अट्रैक्शन के कारण हो या लस्ट के कारण हो या पैशन के कारण हो या एक जेन्युइनली लव के कारण हो, जब लड़का और लड़की अपनी इच्छा से एक दूसरे को चुनते हैं और शादी करते हैं उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। आज की भाषा में जिसको आप लव मैरिज कहते हैं। इसका स्थान बहुत सारे आचार्यों ने इसका स्थान छठे में रखा है क्रोनोलॉजिकली, पर अनेक धर्म शास्त्रों में इसको सबसे अच्छा माना जाता है। गांधर्वम इत्येके प्रशंसन्ति स्नेहानुगत्वात्। बहुत सारे ऋषि व धर्मशास्त्र के ऑथर्स इस गांधर्व विवाह को जहां लड़का लड़की अपनी इच्छा से शादी करते हैं इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्यार इन्वॉल्व है, इसी तरह का कोई लेन देन कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, ये अनकंडीशनल लव पर बेस है, इसलिए बहुत सारे आचार्य इसको अच्छा मानते हैं। आज के डेट में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर शादी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें कोई कमियां नहीं है, हर विवाह में कुछ ना कुछ अच्छाइयां है कुछ ना कुछ कमियां है। गांधर्व विवाह या लव मैरिज में भी बहुत बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे कमियां हैं, वो हम अभी थोड़ी देर के बाद थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। अगला जो पॉइंट है जो उससे जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की शादी है, हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतिम रुदतिम गृहात प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधिरुच्यते। जिस विवाह में लड़की को कोई बदमाश जबरदस्ती छीन के ले जाता है, मारपीट करके ले जाता है, वो जो कहते हैं ना किडनैप करता है, उनके घर वालों को परेशान करके ले जाता है किडनैप करके और जबरदस्ती अपने साथ रखता है, उसके साथ खराब संबंध बनाता है या शादी करता है, उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। और जो आठवां सबसे लोएस्ट कैटेगरी का विवाह है उसको कहते हैं पैशाच। सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानां पैशाशश्च अष्टमो धमः। जब किसी सोई हुई लड़की को या किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेटेड करके बेहोश की गई लड़की को या अनकंशस बना करके किसी लड़की को उठा लिया जाता है, किडनैप कर दिया जाता है और उसके साथ शादी कर ली जाती है, किसके द्वारा? कोई सबसे बड़ा पापी मतलब जानवरों से बदतर शब्द दिया पापिष्ठ जानवरों से बदतर व्यक्ति के द्वारा ऐसे विवाहों को पैशाच विवाह कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिस भी विवाह में आप कहेंगे ये जो राक्षस और पैशाच विवाह को एक्सेप्ट ही क्यों किया, इतना गंदा है, कोई किसी को किडनैप करके, मार काट करके, बेहोश करके, शराब पिला के शादी करता है, इसको हिंदू धर्म में एक्सेप्ट ही क्यों किया? अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लड़कों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा लड़कियों का, वो फिर उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनकी ये जो हेल्पलेसनेस होगी, उससे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसको, अल्दो ये सबसे घटिया है, इसको भी शादी का एक रूप दिया। कम से कम वो लड़की की एक किसी के साथ शादी रहेगी, नहीं तो वो लड़का छोड़ के भाग जाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा। पर शास्त्रकार कहते हैं ये सबसे अधम, सबसे लोएस्ट कैटेगरी का विवाह है, सिर्फ बहुत ही क्रूर, बदमाश, दुष्ट लोग इस तरह के पाप कार्य करते हैं। तो लड़कियों की जो सोशल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किया गया। अब अगली बात जो है, ये 8 शादियों में, सब विवाहों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। वेदों से लेकर अलग अलग शास्त्रों में जो बेस्ट सॉल्यूशन बताया गया कि जहां लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो, चाहते हो, और माता पिता पेरेंट्स की उसके साथ भी सहमति हो, एग्रीमेंट हो, एग्री करते हो, और जहां किसी भी तरह का कोई कंडीशन, लेन देन या किसी भी तरह का कंडीशन ना हो। तीसरा, जहां लड़का और लड़की बराबर हो, वो सबसे बेस्ट विवाह होता है। पर सोसाइटी में ऐसा नहीं दिखता है, सोसाइटी में जो दिखता है उसको समराइज्ड करके, क्लासिफाई करके हमारे पूर्वजों ने 8 तरह के विवाह की व्यवस्था की। पर यह भी बताया जो बेस्ट रास्ता ये है कि जहां लड़का लड़की और उनके माँ बाप, जब चारों में, 4 ने 6 बोला, लड़का लड़की और उनके माँ बाप 2-2 होंगे, 6, जब 6 लोगों के बीच में सहमति बने, माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा को रेस्पेक्ट करे, और बच्चे, जो गंधर्व विवाह की बात हम कर रहे थे उसमें क्या कमी है, ज्यादातर लव लव के कारण, प्रेम के कारण नहीं होता है, उस प्रेम में कभी कभी इन्फैचुएशन जुड़ा होता है, कभी कभी फिजिकल अट्रैक्शन के कारण हम लव सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं, कभी कभी पैसे के लालच से, या रूप की, लड़कों को रूप और लड़कियों को पैसे के लालच से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जब अंदर कोई और कारण से हम प्यार करने की नाटक करते हैं या प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गंधर्व विवाह ही होता है, वो भी लव मैरिज ही होता है। पर आगे जाकर ऐसे विवाह बहुत दिन टिकते नहीं है, पर झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि सारे, बहुत कम ऐसा होता है जहां प्योर लव होता है, जहां अनकंडीशनल लव होता है। मोस्ट ऑफ जगह लव, लव के पीछे, प्यार के पीछे कोई ना कोई सेकेंड रीजन होता है, या तो रूप है, या सुंदरता है, या फिजिकल अपीयरेंस है, या पैसा है, या प्रॉपर्टी है, या कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में रहता है। अगर इन्हीं के लव मैरिज में ये सब फैक्टर काम करते हैं, इसीलिए बहुत सारे जगह लव मैरिज भी नहीं चलते। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होने से पेरेंट्स इन चीजों का ध्यान रखते हैं, बच्चे, लड़का लड़की अपने हिसाब से चूज करते हैं, पेरेंट्स को अनुभवी होने के कारण जो उसमें प्रॉब्लम्स है, जो प्लस माइनस है, वो उसको समझते हैं। जब बच्चे और माँ बाप मिलजुल के करते हैं, दैट इज द बेस्ट जो टाइप ऑफ मैरिज जो हमारे शास्त्रों में रिकमेंडेड है। तो इस तरह के ये जो 8 तरह के विवाह है, उसमें पहले की जो 5 तरह के विवाह है उसको प्रशस्त माना जाता है। प्रशस्त का मतलब होता है प्रेजवर्थी, और आप कह सकते हैं करना चाहिए। और जो दूसरे पांच को उनको इतनी प्रशंसा नहीं की जाती। और हमारे शास्त्रकार कहते हैं आसुर पैशाच और राक्षस, ये ऐसा विवाह कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी समझदार व्यक्ति को ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये है आठ विवाहों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी। अब हम आते हैं जब हम विवाह करते हैं, जो नॉर्मली आजकल हम विवाह करते हैं वैदिक विवाह, वो छोड़ दीजिए, जो पैशाच राक्षस वो तो बहुत गंदे लोगों के लिए है, गंदे लोगों के द्वारा किया जाने वाले बुरे कर्मों से लड़कियों को एक सोशल स्टेटस देने के लिए किया जाता है। जो नॉर्मल विवाह होते हैं उसमें जो विधियां होती हैं, उन विधियों को थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, कुछ मेन मेन विधियों को, जिसे कि आपको, हमें और हमारे बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि जो विवाह में क्या होता है और वो कितने सुंदर भाव के साथ होता है। एक जयमाला होती है जब लड़के और लड़की अपने गर्लफ्रेंड एक्सचेंज करते हैं, कहीं शुरू में होता है, कहीं बीच में होता है, अलग अलग स्टेट्स में कल्चर में अलग अलग होता है। ये जयमाला का ट्रेडिशन का क्या अर्थ है पता है? प्राचीन काल में, अच्छा, जयमाला में सबसे पहले कौन माला डालती है? लड़की डालती है ना, वधु कन्या डालती है। क्यों? ये प्राचीन काल का वो जो एक प्रैक्टिस था, स्वयंवर का प्रैक्टिस, स्वयंवर समझते हैं, जहां लड़कियां लड़कों को चूज करते थे। ध्यान रखिए, जो स्वयंवर आपने जाना है, आम लोगों में ये कम होता था, क्योंकि आम लोगों में ऐसी एबिलिटी नहीं होती थी कि उनकी लड़कियां के लिए 10 20 50 लड़के और वो चूज करे। हाँ, जो पैसे वाले होते, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा थी, राजा है, जमींदार है, जो बड़े लोग हैं, उनकी लड़कियों के लिए स्वयंवर होता था। स्वयंवर में क्या होता है, उसकी जो प्रोसेस क्या है, लड़की विवाह करना है उसके लिए बहुत सारे जगह अनाउंसमेंट किया जाता था। तो जिनको इंटरेस्ट है लड़की से शादी करने के लिए, आप आइए। जैसे आजकल आप अपना वो रिज्यूमे वगैरह डालते हैं ऑनलाइन, जो वेडिंग उसमें साइट्स होते हैं, मैरिज साइट्स में, तो वो सब आते थे अपना चिट्ठा लेकर के, पहले से भेज देते थे या उस समय लेकर आते थे, और लड़की को पता होता था और उसके जो फ्रेंड्स हैं लड़की के, वो बता देते थे ये इतनी जगह से एक्सेप्टेंस आया है निमंत्रण का, कि वो सब आएंगे स्वयंवर में, और पहले से उनका डिटेल आ जाता था, ये लड़का इस खानदान का है, ये जानता है, इसकी जो भी आजकल होता है वही उस समय भी होता था, इसका हाइट इतना, लंबाई इतना, प्रोफेशन ये इस तरह के नेचर है, इस तरह के टैलेंट है, इस तरह के क्वालिटी है, सब वही होता है। थोड़ा बहुत वो समय के हिसाब से उसका बाहरी रूप बदल जाता है, बाकी तो सेम रहता है। जब आते हैं तो लड़की चूज करती है जो उसको सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे बेस्ट चॉइस उसके लिए होता है, उसके गले में वो वर्णमाला डालती थी। वर्णमाला, वर्ण मतलब एक्सेप्टिंग, माला मतलब गार्लिंग, दिस गर्ल। जब आप माला डालती थी, इट मीन्स द गर्ल इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट बॉय और पर्सन एज हर हस्बैंड, वो उसको अपने पति के रूप में चुनने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट कर चुकी है, इसीलिए इसको वर्णमाला कहा जाता था। बाद में जयमाला के रूप में शब्द यूज हुआ, लड़का बदले में डालता था। इसी तरह जब एक मधुपर्क रिचुअल होता है, मधुपर्क में शुरू शुरू में जब लड़का पहुंचता है अपने बारात लेकर के, नाच गाना करके जब बारात पहुंचता है, तो लड़की के घर वाले लड़के का वेलकम करते हैं और उस वेलकम को मधुपर्क कहा जाता है। मधुपर्क में अपना शहद और दही, हनी और योगर्ट, इन दोनों के मिक्सचर को जो लड़की के माँ बाप है वो लड़के को खिलाते हैं। आप कहेंगे इसमें रेस्पेक्ट क्या है? प्राचीन काल में ये जो मधुपर का वो सब कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही रिजर्व्ड रहता था। जो हाईली ऑनरेबल होते थे, हाईली रेस्पेक्टेड होते थे, उन्हीं को ही जब वो घर में आते थे या कहीं जाते थे ये मधुपर को उनको दिया जाता था। मधुपर का ऑफर करने का मतलब है कि आप हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑनरेबल हैं। जैसे कोई राजा आए, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आए, या घर में कोई ऐसा रिलेटिव जिसको हम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दादा है, नाना नानी है, दादा दादी है, ऐसा कोई जो जो बहुत ज्यादा ऑनरेबल होता है, या आपके रिलेटिव में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, वो आपके घर आता है, उसको दिया जाता था। विवाह के दिन लड़की घर वाले होस्ट होते हैं, लड़का गेस्ट बनकर आता है, और वो लड़का उस दिन चीफ गेस्ट है, और लड़की ने उसको वरण किया है, वरण चूज किया है। इसीलिए आपको पता है लड़के का, जिसको आप दुल्हा कहते हैं, अंग्रेजी में आप ब्राइड ग्रूम कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में वर कहते हैं। वर का दो अर्थ है, वर का मतलब श्रेष्ठ, वर का मतलब द पर्सन हु इज ऑलरेडी चूज्ड, जिसको चुन लिया गया है। किसने चुना है? लड़के ने जिसको चूज किया है वो वर है। वर मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों? जिसको आप चूज करते हो वो आपके लिए श्रेष्ठ ही होता है ना, ध्यान रखिए। तो जो वो गेस्ट बन के आता है, वर आता है, उस वर को मधुपर्क के द्वारा लड़की के माँ बाप स्वागत करते हैं। आज के दिन आप हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं, सबसे ऑनरेबल है, हमारे घर का सबसे बड़ा गेस्ट आप हैं, उनको रेस्पेक्टफुली मधुपर्क दिया जाता था। उसमें एक रिचुअल कन्यादान है, आजकल बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं उसमें, दान क्यों, दान मतलब कोई वस्तु थोड़े ही है। इस भाव से कन्यादान कभी नहीं होता है, ठीक है। दान शब्द आजकल हम बड़े ना क्या कहते हैं, वो हाल से वो पत्थर से भी पानी निकालने की हर चीज में कोशिश करते हैं, अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं। कन्यादान का अर्थ कन्या को दान कर देना नहीं है, दान शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सिंपल मीनिंग है कि माँ बाप, अभी लड़की जो है अभी अपने पेरेंट्स के घर में थी और अभी अपने पति के घर जाएगी, तो पिता माता अपनी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे करके कुछ कंडीशन के साथ हाथ दे रखते थे, क्योंकि हाथ को दूसरे हाथ में रखते हैं, देते हैं, उसी को दान कहा जाता है। इसका कोई और वस्तु के रूप में यूज होने का कोई मतलब नहीं। पर ये चीजें इंटरेस्टिंग नहीं है, जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कन्यादान के समय लड़की के पेरेंट्स लड़की का हाथ वर के हाथ में रखते हैं, तो उसमें वो एक कंडीशन मंत्र में बोलते हैं, और वो मंत्र वो तीन बार रिपीट करके बोलते हैं। कौन? कन्या के माँ बाप। क्या बोलते हैं? धर्मे चार्थे च कामे च नाति चरितव्या त्वयेयम्। माँ बाप इस कंडीशन के साथ अपनी बेटी की ब्याह कराते हैं वर के साथ, कि इसके बाद मेरी बेटी किसी भी हालत में तुम जब कोई भी धर्माचरण करोगे, रिलीजियस रिलीजन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, फाइनेंस रिलेटेड पैसे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जो, वेल्थ से रिलेटेड और काम सेंसुअल प्लेजर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जो, इसमें मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को कभी भी ट्रांसग्रेस नहीं करना, उससे बढ़ चढ़ के आगे मत जाना, उसको पीछे नहीं रख देना। तो वर वहां बोलता है नाति चरामी, श्योर इंडीड आई विल नॉट ट्रांसग्रेस इट, जरूर मैं कभी भी आपकी बेटी को ट्रांसग्रेस नहीं करूंगा, उसको दबा के आगे नहीं बढ़ूंगा, उसके छुपा के कोई चीज एंजॉय नहीं करूंगा। और माँ बाप इससे खुश नहीं होते हैं। वो तीन बार रिपीट कराते हैं सेम चीज, और लड़का तीन बार प्रमिश करता है, नाति चरामी नाति चरामी नाति चरामी, तब लड़की को तब कन्यादान संस्कार होता है। एक चीज और जानने की जरूरत है, वैदिक सनातन परंपरा में विवाह, जैसे लोग आजकल कोर्ट में भी शादी कर लेते हैं और अलग अलग तरीके से शादी करते हैं, विवाह को एक यज्ञ कहा गया। मतलब जो वेडिंग सेरेमनी है इट इटसेल्फ ए यज्ञ। यज्ञ में तीन चीजें होती हैं, दान देव पूजा संगतिकरण, है ना। दान समझते हैं, कुछ आप देते हैं, देव पूजा जो उस पर्टिकुलर यज्ञ के समय जो देवता है उसकी आप पूजा करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, संगति एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और यज्ञ दुनिया का सबसे पवित्र कर्म होता है। वो आरण्यक की भाषा, तैतरीय आरण्यक की भाषा में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है, और हर यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो विवाह भी एक यज्ञ है, इसमें भी देना देने लेने, इसमें भी देने की भाव रहता है, इसमें भी रेस्पेक्ट करने का भाव रहता है, और उसमें भी यूनियन की भाव रहता है। तो विवाह संस्कार बड़ा पवित्र है सनातन धर्म में, ये बहुत ही सैक्रेड है, इसकी पवित्रता को फील करने की जरूरत है, दोनों को, लड़का और लड़की को फील करने की जरूरत है। आजकल के तरह हर चीज को क्लब स्टाइल में जो करते हैं उसका परिणाम भी हम देखते हैं, कितने दिन टिकता है और हमारे पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप में क्या हालत होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके बच्चे जो नए जमाने के बच्चे हैं वो उनके रिलेशनशिप में खराब होता है, उनके माँ बाप भी कौन से दूध के धुले हुए होते हैं। ज्यादातर बच्चों के माँ बाप की लाइफ में भी वही मिजरी है, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों का। क्यों? क्योंकि विवाह को सीरियसली नहीं लिया, विवाह की विधि को ठीक से नहीं समझा। आप कहेंगे विवाह की विधि समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विधि समझने से बात नहीं है, विवाह की विधि को समझने से आपको ये समझ में आता एक रिलेशनशिप कैसे निभाया जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, पुरुष और स्त्री को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब चीजें विवाह विधि में बताई जाती है। क्योंकि हम सीरियसली नहीं लेते हैं, नहीं समझते हैं, तो हमारे पास वो एजुकेशन नहीं हो पाता है। जब कन्यादान संस्कार होता है उसके बाद लड़का और लड़की एक बड़ा सुंदर मंत्र बोलते हैं। मैं ये दो मंत्र आपके सामने कोट करना चाहूंगा, और ये इतने सुंदर मंत्र है हर लड़का लड़की को सुनना चाहिए। मंत्र है, समंजन तो विश्व देवा समपुरदयानिनौ सम्मातरिस्वा समधाता समुदेष्ट्री दधातुनौ। ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें दोनों एक दूसरे के लिए दोनों बोलते हैं, जो पुरोहित है वो दोनों से बुलवाते हैं। क्या बुलाते हैं कि जो इस ये जो जितने भी देवता लोक हैं या ज्ञानी विद्वान लोक हैं, वो हम दोनों को मिलाएं, या संसार के सारी देवताएं नेचुरल पावर हमारी जो मिलन है उसको स्वीकृति दे। और हमारा जो मिलन है वो कैसा है, हमारी जो वो यूनिटी है थ्रू द वेडिंग सेरेमनी वो कैसा है, कहते हैं सम आपो, आप कहते हैं पानी, पानी के समान हमारा मिलना हो, हमारा मिलना वायु के समान हो, हमारा मिलना पुरुष और प्रकृति के समान हो। मैं इन तीन चीजों को एक थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहूंगा, यही तो समझने की जरूरत है वर और वधु को। हमारी जो यूनिटी होगी शादी के बाद, जो पति पत्नी के रूप में हम एक बनेंगे, वो हमारा एकापन कैसा होगा, पानी के समान। पानी के समान कहने से तो बात करके चले जाएंगे, पर थोड़ा ध्यान से समझिए। आप दो अलग अलग नदी से पानी लाइए या जो भी सोर्स है दोनों अलग अलग सोर्सेस से पानी लाइए, पानी को एक जगह मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको कोई कहे इस पानी को दोबारा अलग करो, जो पानी जिस सोर्स का है उसको उसी तरह वापस कर दो, हो सकता है नहीं हो सकता। पर ध्यान रखिए पानी के भी अपने डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, हर पानी अपने लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आता है। बादल की बारिश के बाद कोई पहाड़ों से गुजरता हुआ आता है तो कोई जमीन से गुजरता हुआ आता है, कोई रेगिस्तान से गुजरता हुआ आता है। हर एक की अपनी अपनी एक्सपीरियंस है पानी का, हर पानी का अपना अपना बैकग्राउंड है, अपनी अपनी एक्सपीरियंस है। पर एक बार वो मिल गए फिर उनमें कोई डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। इसी तरह लड़का और लड़की दो अलग अलग सोर्स के पानी की तरह हैं, बिल्कुल अलग है, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, अलग फैमिली ट्रेडिशन से आते हैं, अलग पेरेंटिंग से आते हैं, और सबसे बड़ी बात अलग है, दोनों लड़का और लड़की हैं, दोनों के जेंडर अलग हैं, दोनों के एस्पिरेशंस अलग हैं, दोनों के इमोशनल लेवल अलग, इमोशन का लेवल अलग अलग है। और जहां हम थोड़े दूर दूर से शादी करते हैं, इंटर स्टेट, इंटर लैंग्वेज, इंटरनेशनल, इंटर रिलीजियस शादी करते हैं, इंटर कल्चरल, वहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। पर जब दोनों मिलते हैं, पानी की तरह मिलते हैं, मतलब अब कोई डिफरेंसेस नहीं है, अब ना मेरा है मेरा घर तुम्हारा घर है, अब ये हमारा घर हो जाता है, अब ना मैं हूं ना तुम हो, अब हम हो जाते हैं, ना मैं गुप्ता ना तुम सिंह हो, अब हम गुप्ता सिंह बन जाते हैं, या जो भी, अभी गुप्ता सिंह को हटा के आप कोई तीसरा नाम जोड़ दीजिए, या जो भी आपको, कोई एकाकार हो जाते हैं, आप गुप्ता भी बन सकते हैं सिंह भी बन सकते हैं, जैसी आपकी आपस में सामंजस्य बने। ना ये मेरा अकाउंट है ना तुम्हारा अकाउंट है, ये हमारा है, ये ना मेरा माँ बाप है तुम्हारे माँ बाप है, ये हमारे माँ बाप है, ये ना मेरा मेरी कल्चर है ना तुम्हारी कल्चर है हमारी कल्चर है, तुम्हारी सब मेरी है मेरी सब तुम्हारी है, हम दोनों एक दूसरे के हैं। ये पानी की तरह मिल जाना कि अपने बैकग्राउंड को पीछे रख के अब हम एकाकार हो जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, इसी चीज को तो हम समझ नहीं पाते हैं। लड़की बहू बन के जब आती है तो घर में तमाशा शुरू हो जाता है, लड़के के माँ बाप उसको अपना समझ नहीं पाते हैं, लड़के उनको अपना माँ बाप नहीं मान पाती है, वो अपने माँ बाप को तो माँ बाप मानती है पर सास ससुर को बेइज्जत करने में कोई या उनको दुत्कारने में कोई दूरी नहीं रख पाती। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ इंडियन फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कर रहा हूं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं, जो मिलजुल के रहते हैं वो समझे ना समझे शास्त्रों के इन्हीं विचारों को अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्योंकि इसी तरह पुरुष भी वो अपने माँ बाप और खुद को तो इम्पोर्टेंस देता है, वो ये भूल जाता है जिसको तुम ब्याह कर लाए हो पत्नी, उसका भी अपनी माँ बाप है, उनके साथ भी उसकी अटैचमेंट है, उसके साथ भी उसका, वो भी उनको रेस्पेक्ट करता है, वो भी उनका ख्याल रखना चाहता है। तो इसी तरह ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, पानी की तरह मिलना मतलब हम सब एकाकार हो गए। इसी तरह का सम मातरिश्वा, मातरिश्वा वायु को कहते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है, और जब हम सांस लेते हैं ये एक ही है, ये वायु अलग अलग जगह के, इनके भी अपने एक्सपीरियंस है, कोई समुन्दर से आता हुआ है कोई, तो कोई रेगिस्तान से आता है, कोई अटलांटिका से आता हुआ होता है, कोई जंगल से आता हुआ होता है, हर वायु अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आता है, पर जब मिलते हैं तो एकाकार हो जाते हैं। यही मंत्र उपदेश देता है कन्यादान के बाद कि हम आगे से समंजन्तो विश्वे देवा समाप हृदयानि बोल। ठीक इसके बाद और एक सुंदर मंत्र आता है जब दोनों बोलते हैं, वो भी बहुत सुंदर मंत्र, हर किसी को जानना चाहिए। उसमें जो वर है, वर मतलब जो ब्राइड ग्रूम है, वो अपने ब्राइड से कह रहा होता है, अभी शादी हुई नहीं है, विवाह संस्कार नहीं हुआ है, उससे पहले की प्रोसीजर में ये मंत्र बोले जाते हैं। अमोहम अस्मि सात्वम सात्वमसि अमोहम सामाहस सामाहमस्मि रुक्त्वम द्यौरहम पृथिवीत्वम तावेव विवाह वही सहरे तो दधा वही प्रजाम प्रजनया वही पुत्रान विंदा वही बहुन्ते संतो जरदष्टयः। लड़का बड़ा इनोसेंटली बोलता है अपनी होने वाली पत्नी को कि मैं अमा हूं तुम सा हो। अमा का मतलब सेंटेंस है और सा मतलब ट्यून है। और कहीं तुम्हें लगे कि ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बड़ा अपने बारे में बड़ा बोल दिया, तुम्हारे बारे में छोटा बोला, चलो इसको अपोजिट कर देते हैं, तुम अमा हो सेंटेंस हो, मैं सा हूं ट्यून हूं। हमारे में से एक सेंटेंस से एक ट्यून है, इसका मतलब है जब हम दोनों मिल जाते हैं तो एक प्लस एक दो नहीं होते हैं, 11 हो जाते हैं। जब ट्यून और सेंटेंस प्रॉपरली मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, संगीत पैदा होता है, म्यूजिक पैदा होता है, हर कितना मिठास से भरा हुआ होता है। हम दोनों म्यूजिक पैदा करेंगे, हमारे में से एक सेंटेंस बनेगा, एक ट्यून बनेगा। पर जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है वो है ट्यून और सेंटेंस दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। शादी के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं होना ही नहीं चाहिए एक जैसा, अलग अलग और एक दूसरे से मिलकर ही आप एक नई सृष्टि बनाओगे, म्यूजिक बनाओगे। आगे वर कहता है इसी मंत्र में, मैं ऋग्वेद हूं तुम सामवेद हो। ऋग्वेद ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, सामवेद भक्ति को उपासना को रिप्रेजेंट करता है। केवल ज्ञान कोरा ज्ञान ईगो को पैदा करता है, रावण बनाता है। केवल भक्ति ब्लाइंड बिलीवर पैदा करता है। जब हम दोनों मिल जाते हैं, ऋग्वेद और सामवेद का विषय जब दोनों मिल जाते हैं, कोई ज्ञान और भक्ति दोनों को जब जोड़ देता है तो वो परम ईश्वर ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। इसी तरह हमारे में से एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, हम मिलके एक स्पिरिचुअलिटी के कल्मिनेशन को पैदा करेंगे। हमारे में से एक द्युलोक है, आकाश है, एक पृथ्वी है। आकाश और पृथ्वी के अंदर सारा संसार समाया हुआ है जो है। हम दोनों मिलके ही संतान पैदा करेंगे, इस परिवार को पालेंगे, एक खूबसूरत फैमिली बनाएंगे, जिस फैमिली में खूबसूरत म्यूजिक होगा, खूबसूरत सब कुछ मिठाई मीठा होगा। पर ये कब होगा, जब हम दोनों मिलके एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे की जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है उसको रेस्पेक्ट करेंगे। इसी ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, वो मंत्र आमतौर पर विवाह में आशीर्वाद के रूप में यूज होता है, और वो मंत्र है इहे माविंद्र समनुद चक्रवाके वदंपति। ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। तो ऋग्वेद का मंत्र कहता है तुम दोनों चक्रवाक के तरह बन जाओ। चक्रवाक, चकुआ एक पक्षी है, एक बर्ड है, उसका नाम है चकुआ, अंग्रेजी में शायद क्रेन या कुछ कहते हैं। उनकी खास बात है, वो जो बर्ड है, पर्टिकुलर बर्ड, उनकी खास बात है कि ये जो दोनों जुड़े हैं, पति और पत्नी, मतलब एक मेल और फीमेल, ये हमेशा साथ रहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऋग्वेद का मंत्र कहता है तुम दोनों उस चकुआ और चकुई पक्षी की तरह हमेशा एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहो, एक दूसरे के लिए समर्पित रहो। प्रॉब्लम क्या है कि हम डिवोटेड क्यों नहीं हो पाते, हमारा ईगो आ जाता है, मेरी स्पेशल आइडेंटिटी आ जाती है। ध्यान रखिए, जब हम कहते हैं डिवोशन या डिवोटेड होना, ये वन साइडेड की बात नहीं है, क्योंकि फिर इसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। पुरुष समझता है कि पत्नी मेरे लिए डिवोट करे, और कभी कभी पत्नी समझती है कि पुरुष मेरे लिए डिवोशन करे। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब वन साइडेड अच्छी चीज करते हैं, वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। जब हम दोनों एक दूसरे के लिए डिवोटेड होते हैं, मैं तुम्हारे सुख में सुखी, दुख में दुखी, तुम मेरे सुख में सुखी, मेरे दुख में दुखी, जब हम एक दूसरे के लिए होते हैं, उस चकुआ चकुई की तरह ऋग्वेद की भाषा में चक्रवाके व दंपति होते हैं, तो फिर बड़ा खूबसूरती बनता है। कितना भी बड़ा दुख आए, अगर पति पत्नी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से डिवोटेड हैं, सारे बड़े से बड़े पहाड़ जैसा दुख भी आपको छोटा लगता है। पेड़ के नीचे रहने वाला दंपति, अगर पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध है, वो होमलेस होने पर भी खुश हो सकते हैं। और हम देखते हैं लोग महलों जैसा घर में रहते हैं, पति पत्नी करोड़ों की प्रॉपर्टी के साथ रहते हैं, तो भी जिंदगी में शांति नहीं है, क्योंकि पति पत्नी में बनती नहीं है। वो चर्चा तो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगले बार चर्चा करेंगे कि शादी के बाद पति पत्नी कैसे रहें। पर आज का टॉपिक, क्योंकि विवाह संस्कार से रिलेटेड है, मैं अपने आप को कंट्रोल करके नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं। एक रिचुअल है अश्मारोहण, अश्मारोहण या पाषाणारोहण कहते हैं। अश्म कहते हैं पत्थर को। लड़की अपना एक पैर एक पत्थर पर रखती है, और उस समय जो कन्या है, ब्राइड है, उसका भाई का वहां एक रोल है, उसका भाई उसको हेल्प करता है लड़की को, उसके एक पैर को उस पत्थर पर रखने के लिए। इसको अश्मारोहण कहते हैं या प्रस्तरारोहण कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इस रिचुअल के मतलब उस मंत्र में है, जो मंत्र उस समय पढ़ा जाता है, और उस मंत्र में भाई के मुंह से वो मंत्र पढ़ा जाता है, तुम इस स्टोन के तरह पत्थर के तरह मजबूत बनो, जो लाइफ में तुम्हारे दुख परेशानियां डिस्ट्रेस कैलामिटीज दुश्मन आए, उस समय अपने आप को उस पत्थर के तरह मजबूत बनाओ। क्या भाव है? अपनी बहन अब अपने घर छोड़ करके दूसरे के घर जाएगी, भाई बहन की अपनी एक सुंदर रिश्ता है, वो भी विवाह के समय झलक के आता है। भाई बहन की जो एक बड़ा मीठा रिश्ता है, मीठा खट्टा रिश्ता, वो भी विवाह में झलकता है। हिंदुओं के विवाह में भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कल भी था, विवाह के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ दूंगा जब तुम्हारी कोई परेशानी होगी। पर तुम्हें भी यह ध्यान रखना है कि विवाह के बाद परेशानियां आती हैं। लड़के और लड़कियां शादी से पहले, हम सब और हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब यही करते थे। शादी से पहले हम सपना देखते हैं, शादी के बाद सब बढ़िया होगा, लाइफ बिल्कुल रोजी रोजी है, गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, सब जगह खुशी खुशी होगी, बस हम दोनों उस प्यार तोता मैने की तरह सारे दुनिया में खुश रहेंगे। शादी के बाद ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद लाइफ वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल सबके होते हैं, अप्स हैं डाउन्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। रिलेशनशिप में भी खटास आता है, मिठास आता है, कड़वापन आता है। समाज के साथ सोशल रिलेशनशिप में भी अच्छा बुरा होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, अच्छाई भी आती है, हर तरह के सुख दुख आते रहते हैं। और उस समय तुम क्योंकि शादी से पहले सपना देख के जा रहे हो कि पति के मेरी शादी होगी, सब बढ़िया होगा, जरूरी नहीं है। लाइफ में जब मुसीबत आए, समस्या आए, इस पत्थर के तरह स्ट्रांग बनना। बोलने की क्या जरूरत थी? बोलने की इसीलिए जरूरत थी, कल तक तुम्हें चिंता नहीं था, माँ थी, पिता थे, भाई बहन थे, हम मिलजुल के रहते थे, तुम एक नए फैमिली में नया रिश्ता करने जा रहे हो, पता नहीं कैसा रिश्ता होगा नहीं होगा, कितने अच्छे होंगे बुरे होंगे, आगे का जीवन कैसा रहेगा, हम वहां नहीं होंगे फिजिकली, मेंटली तो होंगे, तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इस पत्थर के तरह स्ट्रांग बनना पड़ेगा, झुकना नहीं, अपने आप को टूटने नहीं देना, ब्रेक डाउन नहीं करना, मजबूती से संघर्ष करना, ये उस अश्वारोहण का मंत्र का भाव था। हर लड़की को समझना चाहिए, हर लड़की को समझाना चाहिए शादी के समय, विवाह के बाद सब चीजें अच्छे नहीं होते हैं और तुम्हें जल्दी टूटना नहीं चाहिए, बात बात पर तलाक देने की धमकी नहीं देनी चाहिए, 10 बार मैसेज भेजा आपका आंसर नहीं आया अब मैं अलग हो जाऊंगी, ऐसे नहीं चलता। एक रिचुअल होता है, टाइम हो गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ज्यादा करेंगे, जो बहुत ही पॉपुलर विधि है उसको आप कहते हैं प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा समझते हैं, हिंदी में आप मंगल फेरा बोलते हो, जो अग्नि के 4 फेरा लेते हैं, वो लाजा होम मतलब जो खील होता है ना, जो पॉप्ड राइस की आहुतियां देते हैं और 4 फेरा लेते हैं। पहले की 3 फेरा लड़की आगे रहती है, 1 फेरा में लड़का आगे रहता है। ये फेरा सर्कल क्या होता है, जो सर्कल लेना, अग्नि के सर्कल लेना और 4 फेरा, क्योंकि जीवन तो जीवन में हर चीज तो साइक्लिक मोड में होता है ना, सुख है दुख है साइकिल है, अच्छा है बुरा है साइकिल है, जन्म है मृत्यु है साइकिल है, लाइफ में सब कुछ साइक्लिक मोड में आता है, और हम दोनों ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है इसको साथ साथ निभाएंगे। 4 बार क्यों? आजकल 7 फेरा भी चलता है फिल्मी स्टाइल में, अब वो फिल्मी राइटर किसी ने कब लिख दिया, या पंडित जी को कुछ याद नहीं, मूर्ख पंडित होगा, 4 की जगह 7 कर दिया, तो अब 7 फेरा लोग लड़ जाते हैं, भाई 7 फेरा कराना है, क्यों कराना है, कुछ मतलब पता है? कुछ नहीं पता, बस कराना है। तो 4 फेरा क्यों? क्योंकि जीवन का जो ये जो साइकिल है, इस साइकिल में 4 चीजें अचीव करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लाइफ में कुछ अच्छी चीजें करना है, मिलके करेंगे, पैसा कमाएंगे मिलके करेंगे, पैसे को कमाना खर्च करना मिलके करेंगे, अपना जो फिजिकल डिजायर है, सेंसुअल प्लेजर है, इंद्रियों का सुख है, उसको भी हम साथ साथ करेंगे, और अंत में जो स्पिरिचुअल जॉइनिंग है मोक्ष पाने की, वो भी हम साथ साथ करेंगे। इस प्रदक्षिणा के बाद एक बड़ा सुंदर मंत्र लड़का बोलता है, उसी को बोल के आज का ये विषय यहीं रखूंगा, और वो है स्त्री का यशोगान। वो इतना आज हर लड़के को ये रटवा देना चाहिए शादी से पहले, और वो है ओम सरस्वती प्रेदमिव सुभगे वाजिनिवति याम त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमं यशः। क्या महिमा मंडित मंत्र है वो। मंगल फेरा के बाद लड़का बोलता है कि हे मेरी पवित्र पत्नी, महिला जो भी अभी शादी तो पूरी नहीं हुई है, तुम सरस सुभगे हो, सौभाग्यवती हो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तुम उस महिला शक्ति का, स्त्री शक्ति का, तुम उस फेमिनिन पावर को रिप्रेजेंट करते हो। वो कौन सा फेमिनिन पावर है जो इस संसार को, मैटेरियल वर्ल्ड को, इस दुनिया को जो होल्ड करती है? आपको जो लोग गीता और वेदांत दर्शन उपनिषद क्लास वगैरह में आते हैं, बार बार हमने बहुत बार चर्चा की है, ये जो संसार है उसका मूल जो है उसको हम प्रकृति बोलते हैं। परमात्मा जो उसकी निमित्त कारण है उसको हम, इफेक्टिव कॉज है उसको हम पुरुष बोलते हैं। वो प्रकृति स्त्रीलिंग में होती है। तो पुरुष बोलता है ये सारा संसार में उस स्त्री का भी एक महनीय योगदान है, और आज तक भी उस महिला शक्ति का, स्त्री शक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा रहता है। और मैं क्यों ये मंत्र बोल रहा हूं, मैं ये याद करके बोलना चाहता हूं कि हे सुंदर, हे महिला, आई स्वीयर, मैं शपथ लेता हूं, तामद्य गाथाम गास्यामी या स्त्रीणाम उत्तमम यशा। वो जो महिलाओं की महिमा है, वो जो स्त्रियों की ग्लोरी है, वर्थ वाइल ग्लोरी, मैं जीवन भर उसको गाता रहूंगा। मैं हर वो स्त्री को रेस्पेक्ट करूंगा, वो स्त्री के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पड़ोस की लड़की के रूप में हो, मैं उस स्त्री की महिमा को इन जनरल यूनिवर्सली गाता रहूंगा। मैं आज प्रॉमिस करता हूं। आप कहेंगे ये शादी में प्रॉमिस करने की क्या जरूरत है, स्त्री की बात करते, महिलाओं की बात करने की क्या जरूरत है। बात है, अभी तक आप महिलाओं से सीधे कभी आए नहीं थे, अब आप मगे किसी महिला के साथ जीवन बिताने जा रहे हो। जैसे कि हम भारत में और दुनिया भर में देखते हैं, पुरुषों को दुनिया भर में देखते हैं, अलग अलग रिलीजन में सिखाया जाता है महिला सेकेंडरी है, पुरुष हाई है। ये जो एटीट्यूड है कि मैं बड़ा हूं, मेरा, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, जब इस विवाह के मंत्र में पुरोहित तो उसको ठीक ठीक उसके कान में डालेगा, ठोक पीट के डालेगा कि तुम्हें दुनिया में हर वो स्त्री को रेस्पेक्ट करना है, उस स्त्रियों का गुणगान करना है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी स्त्री, कोई भी पुरुष अगर अपनी स्त्री को रेस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए नहीं कि वो स्त्री विरोधी, वो अपनी स्त्री को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ओवरऑल महिला को रेस्पेक्ट नहीं करता। वो अपनी माँ को भी, अपनी बहन को भी, किसी भी महिला को जो रेस्पेक्ट नहीं करता, वही अपनी पत्नी को छोटा समझता है। ये जो यूनिवर्सल थॉट है उसके दिमाग में घुसाने की जरूरत है। तुम यूनिवर्सली महिलाओं को रेस्पेक्ट करना सीखो, पत्नी को अपने आप रेस्पेक्ट करना हो जाएगा। ये मंत्र ध्यान के प्रदक्षिणा के बाद पुरुष बोलता है। ऐसे और अनेक विधि हैं, आज समय नहीं हो पाया, अगले बार इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। ये विवाह संस्कार से पूरा सोशल और फैमिली जो जो रिलेशनशिप है, विवाह संस्कार को ठीक ठीक समझ जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएगा। तो मैंने ज्यादा समय आज ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।